परिशिष्ट एक निर्वेद या क्रोध। संस्कृत साहित्य ग्रंथों में अनेक जगह एक पद्य आया है जिसके व्यंग अर्थ के संबंध में बहुत से आचार्यों का मतभेद है। कोई उसका व्यंग निर्वेद बताता है और कोई उसमें से क्रोध का व्यक्त होना मानता है। आज इसी के संबंध में हमें पाठकों से दो दो बातें करनी है। यह पद्य साहित्य दर्पण में भी आया है और इसके प्राचीन तथा सुप्रतिष्ठित संस्कृत टीकाकार श्री रामचरण तर्कवागीश जी ने इसमें निर्वेद का अभिव्यक्त होना स्वीकार किया है। केवल हिंदी ने ही काव्य प्रकाश के अनेक टीकाकारों ने भी इसमें निर्वेद को ही व्यंग माना है। बहुमत इसी पक्ष में है। क्रोध की व्यंजना मानने वाले की संख्या तो शायद एक दो से आगे न बढ़ सकेगी। इस दशा में आजकल के वोट युग में अंतिम पक्ष का दुर्बल समझा जाना स्वाभाविक सिद्ध होता है। हमने अपनी टीका में अल्पमत का पक्ष लिया है और साथ ही इस पद्य में अनेक प्राचीन आचार्यों द्वारा माने गए विधेय या विमर्श नामक दोष को भी अस्वीकार किया है। क्रोध की व्यंजनीयता के संबंध में तो कुछ उपपत्ति की भी दिखाई है, परंतु इस दोष को अस्वीकार करते हुए कोई कारण नहीं बताया। विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तो उसका उत्पादन किया है, किंतु टीका में किसी की युक्ति का तर्क का उल्लेख नहीं किया। विचारणीय इस पद में इस प्रकार है, यकारो यामेव मे यदरयस्तत्रा अप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिग् धिग् शक्रजीतं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृत्थो वंचुनैः किमभिमर्जुनय। राम रावण के युद्ध के समय मेघनाथ और कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद जब प्रधान पुरुषों में रावण ही अकेला रह गया था, उस समय उसने यह पद्य कहा था। इसका सीधा सीधा अक्षरार्थ इस प्रकार है, सबसे पहले तो मेरा यही विचार तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हैं, मेरे शत्रु हो और फिर वे जीवित रहे, सबसे प्रथम तो मेरे लिए यही तिरस्कार की बात है। फिर शत्रु भी कौन, यह तापस राम, फिर वह भी कहीं दूर नहीं, यही सिर पर मौजूद, न केवल मौजूद है बल्कि राक्षसों का बीज नाश कर रहा है और रावण के जीते ही वह सब हो रहा है। इंद्रजीत को धिक्कार है, सोते से जगाए हुए कुंभकर्ण से भी कुछ न बना और स्वर्ग रूपी क्षुद्र ग्राम के लूट लेने मात्र से व्यर्थ फूली हुई मेरी भुजाएं भी व्यर्थ है। यह तो हुआ इस पद्य का अक्षरार्थ। अब सोचना यह है कि रावण के प्रकृत कथन से उसके हृदय का क्रोध प्रकट होता है या निर्वेद। साहित्य और सब शास्त्रों से कठिन है। अन्य शास्त्रों में तो शब्द और उसके वाच्य अर्थ का काम चल जाता है। यदि आपको किसी पंक्ति का वाक्यार्थ आ गया तो आप उसके ज्ञाता हो गए। अन्यत्र अविद्यावृत्ति का सबसे बड़ा आदर है। जो बात स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कह दी है वह सबसे पुष्ट और सर्वाधिक प्रमाणिक समझी जाती है, परंतु साहित्य में यह बात नहीं। यह अविधा की कोई कद्र नहीं, यह ग्राम्य वृत्ति कहती है। देवदत्त के हृदय में इंदिरा जो देखकर अनुराग उत्पन्न हुआ और इंदिरा देवदत्त की प्रेम पूर्ण दृष्टि देखकर लज्जित हो गई। यह इतनी सी बात यदि इसी तरह कह दी जाए तो साहित्य शास्त्र में इसका कहने वाला गंवार समझा जाएगा। यह इतिहास में लिखा जाए तो ठीक हो सकता है, परंतु काव्य में इसका आदर नहीं हो सकता। अनुराग और लज्जा यदि काव्यों में कोई दिखाना चाहे तो उसे इनका नाम हरगिज नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस दोनों के कारण सामग्री की ओर इशारा करके उसके कार्यों का वर्णन करना चाहिए, जिससे व्यंजनावृत्ति के द्वारा लज्जा और अनुराग का भाव श्रोता के हृदय में भाषित हो जाए। जिस तरह सभ्य समाज में नंगा शरीर दिखाना अभद्रता समझी जाती है, उसी प्रकार काव्य में वर्णनीय भाव को नंगी वृत्ति अभिधा के द्वारा बोधित करना अनुचित समझा जाता है। झीने पट के ओठ से छन छन कर झलकने वाली कमनीय काय कांति के समान व्यंजना के द्वारा चमकने वाले भावों का ही यहाँ समादर है। दूसरे शास्त्रों में शब्द और उनका अर्थ पढ़ा जाता है, परंतु साहित्य में उस पर कोई आस्था नहीं। यह तो वक्ता का हृदय पढ़ा जा सकता है। उल्टे शब्दों से सीधा और सीधे शब्दों से उल्टा मतलब निकाला जाता है। अहर्द नहीं नहीं इत्यादि में स्वीकारोक्ति समझी जाती है और उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते से बुद्धि का घोर अपकारी तथा अत्यंत नीच होना समझा जाता है। फिर यह नियम नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो। बिल्कुल भोलेपन की सीधी सच्ची सरल और स्वाभाविक बात भी कहीं कहीं अद्भुत चमत्कार दिखाती है। इससे तो कहते हैं कि साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है। यह न सीधा लिया जाए न उल्टा, शब्द की नहीं बल्कि उसे कहने वाले हृदय की जांच करनी पड़ती है। वक्ता के मन में अंतस्थल में घुसकर यह देखना पड़ता है कि जो कुछ यह कह रहा है वह इसके मनोगत कौन से भाव का कार्य हो सकता है, उसका कार्य कारण भाव किस प्रकार सुसंगत हो सकता है। इस प्रकरण में इस दशा में ऐसी अवस्था के वक्ता के मुख से इस प्रकार इस रूप से निकलती वचन वाली उसके कौन से मनोभाव की द्योतक है, इस बात की पूरी परख कर सकने वाली अप्रतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं वह साहित्य शास्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता। एक बच्चा आपके सामने घबराया हुआ आता है। अब आपको यह जानना है कि घबराहट किस कारण से उत्पन्न हुआ है। धुएं के पास बैठे रहने से भी उसकी सूरत पर घबराहट का चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। भूख प्यास के कारण ऐसा हो सकता है। कुत्ते पीछे दौड़ा हो या किसी आदमी ने ही उसे डरा दिया हो तब भी घबराहट पैदा हो सकती है। उसका भाई किसी मेले तमाशे में चला गया और इसे नहीं ले गया, यह उसके पीछे दौड़ा परंतु उसे न पा सका, इससे भी घबराहट हो सकती है। और भी अनेक कारणों से बालक घबरा सकता है। यदि ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है तो उस बालक की दशा देखकर और कुछ आगे पीछे की बातों का अनुमान करके बिना किसी से पूछे ही आप समझ सकेंगे कि बच्चे की घबराहट का कारण क्या है। अब इस घटना को प्रकृति परिशीलन में निष्णात कवि यदि कोई शब्दमय चित्र का रूप दे दे तो आपको उसके वर्णन को ध्यान पूर्वक रखने में यह मालूम हो जाएगा कि बच्चे की घबराहट का कारण क्या है। प्रकृति की परख में प्रवीण सच्चा कवि इस घबराहट का वर्णन करते हुए उन विशेषताओं का स्पष्ट उल्लेख करेगा जिनसे उस घबराहट का कारण का बच्चे के उस मनोभाव का जिसने उसे विचलित किया है साफ साफ अभिव्यंजना हो सके। जिसे इतनी नजर नहीं वह कभी कहने योग्य नहीं है। आपने किसी को मुस्कुराते देखा, अब आपको यह जानना है कि इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। अविष्ट वस्तु की प्राप्ति से भी मुस्कुराहट होती है। बच्चा खिलौना देखकर मुस्कुराता है और प्रोसित पति का नायिका प्रिया गमन की बात सुनकर मुस्कुराती है। अन्यत्र भी मुस्कुराहट होती है। वीर पुरुष रणभूमि में अपने विरोधी की अकड़ देखकर मुस्कुराता है और वेश्या अपने संपन्न प्रेमी की ओर देखकर मुस्कुराती है। मनस्वी पुरुष अपने ऊपर विपत्ति पड़ती है देखकर अपने प्रारब्ध पर भी मुस्कुराता है। परंतु इन सब अवस्थाओं की मुस्कुराहट एक सी नहीं होती। जिन्हें ईश्वर ने प्रतिभा और प्रज्ञा का प्रकाश दिया है वे ही परख सकते हैं कि कौन सी मुस्कुराहट किस मनोभाव से उत्पन्न हुई है। यदि किसी सच्चे कवि ने ऐसा ही चित्र खींचा तो वहाँ इसका विचार करना होता है कि उस पात्र के हृदय में कौन से भाव जो व्यंजित कराने के लिए कवि ने यह प्रयत्न किया है। तो इसका ठीक ठीक समझ लेना साधारण काम नहीं। यह ऐसा विकट समय है कि बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों की प्रौढ़ा बुद्धि भी इस में पढ़कर चक्कर खाने लगती है। बेचारी किशोरी व बाला की तो विषाद ही क्या, जो इसके सामने टिक सके। किम तत्र परमाणु वही यत्र मञ्जति मन्दरः, यह ऐसा विषय नहीं जिस पर वह हर कोई ऐरा गैरा पचकल्याणी उठा कर तीरंदाजी के हाथ दिखाने लगे। प्रस्तुत पद्य में ही देखिए किसी की राय में इससे निर्वेद गलानी दैन्य और अनौजस्य व्यंजित होता है और किसी की राय में यह गर्व अमर्ष और क्रोध की ध्वनि निकलती है। आज आपको इसी बात पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि दैन्य गलानी और निर्वेद कहते किसे हैं। दुख दारिद्रया अपराधादि जनितः स्वापकर्ष भाषणादि हेतु श्रेवृति ही विशेषो दैन्यम दैन्य मन की उस दशा का नाम है जो दुख दरिद्रता या किसी भारी अपराध करने के कारण उत्पन्न होती है और जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य अपनी हीनता निष्कृष्टता या अकिंचित करता का कथन आदि करने लगता है। दुर्गत्यादेन नौजस्य दैन्यम मलिनताद्रिक अपनी दुर्गति आदि के कारण जो ओजहीनता है उसे दैन्य कहते हैं। इसके कारण मनुष्य की मलिनता आदि उत्पन्न होती है। चिंतोत्सुक्य मनस्तात्पादर्गत्याश्च विभावतः अनुभावात् शिरसो व्यावृत्तिर्गोचरत् गौरत्वात् देहोपस्करणात्यागात् दैन्यं भावं विभाववित् दैन्य भाव को प्रकाशित करने के लिए उसके कारण रूप में चिंता उत्कंठा मानसिक ताप और दुर्गति आदि का वर्णन करना चाहिए और उसके कार्य स्वरूप में शरीर के उपस्करण ब्रैकेट वेशभूषा स्नान आदि ब्रैकेट वन का त्याग करना चाहिए। जिस मनुष्य का दैन्य दिखाना हो उसके वर्णन में पहले पूर्वोक्त कारण में से एक या अनेक का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए जिससे उक्त की स्वाभाविकता श्रोता को हृदयंगम हो जाए, सुनने वाला उस दैन्य का बनावटी न समझे, वह यह समझे कि दैन्य उत्पन्न होने के पुष्कल कारण मौजूद है। इसके बाद उस दीनता के कार्यों का वर्णन होना चाहिए। उदाहरण हतके न मया वनांतरे वनाक्षी सहसा विवासित अधुना मम कुत्र शासति पतितस्येव परा सरस्वती। सीता का परित्याग करने के बाद दुखित हृदय राम ने यह दैन्यपूर्ण उद्गार है। यह वह कहते हैं कि जैसे हरितक क्षुद्र पातकी ने उस कमल नयनी को सहसा वनवास दे दिया, अब वह सती मुझे कहाँ मिल सकती है। मुझसे वह उसी प्रकार दूर हो गई जैसे पतित पुरुष से वेद विद्या दूर हो जाती है। सहसा कहने से मालूम होता है कि राम इस समय सीता को निर्दोष समझ रहे हैं और उस निरपराधिनी को बिना विचारे घोरतम दंड दे डालने के कारण अपने को अपराधी और पातकी समझ रहे हैं। कमल नयनी कहने से सीता की सुकुमारता भोलापन और सौंदर्य अतिशय प्रतीत होता है। उसके ये गुण इस समय राम के हृदय में रह कर शल्य की तरह मर्मांतिक वेदना पैदा कर रहे हैं। ऐसी भोली सुंदर सुकुमारी को बिना किसी अपराध के वनांतर घोर निर्जन वन में छोड़ देना कितना कठोर दंड है, और वह भी उसी के प्राणाधार के द्वारा जिनके लिए उसने कैसी कैसी घोर यातनाएं सही। इसके पद्य के तीसरे चरण में राम के हृदय की उत्कंठा और साथ ही निराशा प्रतीत होती है। यह सब राम की दीनता के कारण है और अपने को पतित की उपमा देना एवं क्षुद्र पातकी बताना उस दैन्य के कार्य है। मन में दैन्य उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने को दीनहीन नीच पतित समझने लगता है। प्रत्याय समस्ता पिक्षुत्पति पिपासा दिसंभवा ग्लानिर्निश प्राण अतकंप कार्यानुत्साह ताद्रिकृत परिश्रम दुख भूख प्यास आदि के कारण उत्पन्न हुई विशेष निर्बलता का नाम ग्लानी है। इससे देह का कापना किसी काम में उत्साह न होना आदि होते हैं। तत्वज्ञान अपद निर्वेद स्वभाव मानम दैन्य चिंता श्रुनिश्वाही वर्णयोक्षास सीताधिकृत तत्वज्ञान के कारण अथवा आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न हुई उस चित्तवृत्ति को निर्वेद कहते हैं जिसमें मनुष्य स्वयं यानी अपने आप अपना अपमान करने लगता है। इस निर्वेद के कारण दैन्य चिंता आंसू बहाना दीर्घ निश्वास और विवरणता आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। मृतु कुंभवालु कारंध्रा पिदार रचना अर्थिन दक्षिणावर्त शंको वयम हंत चोणीकृतो मया अपने पूर्व जीवन को विषय सुखों की साधना में नष्ट हुआ देखकर किसी निर्वेद पुरुष की यह उक्ति है। मिट्टी के घड़े के छेद को बंद करने के लिए मैंने अपना दक्षिणावर्त शंख चूर्ण कर डाला, यह कितने दुख की बात है। यह शरीर या वैसायिक सुख को मिट्टी का घड़ा कहा गया है और जीवन को अमूल्य दक्षिणावर्त शंख बताया गया है। विषय सुख के लिए जीवन नष्ट करना वैसा ही है जैसा पुराने फूटे घड़े का छेद बंद करने के लिए अमूल्य गज मुक्ताओं को पीस डालना है। अच्छा, अब मतलब की बात पर ध्यान दीजिए। पूर्वोक्त पद की व्याख्या करते हुए श्री रामचंद्र तर्क वागीश जी ने लिखा है, जीवत्यौः रावणः इत्यादिना दज्यमानेन श्वानोजस्य रूपदैत्येन अनुमानेन संविलितं स्वावमाननं निरदो आख्यभावो रूपो संलक्ष्य क्रम व्यंगयोः ध्वनिः। उसका तात्पर्य यह है कि इस पद्य में रावण के हृदय का निर्वेद नामक भाव ध्वनित होता है। निर्वेद का अर्थ है स्वभाव मानन, अपने आप अपना तिरस्कार करना, तत्व ज्ञान आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण यह भाव उत्पन्न होता है। यहाँ रावण के ऊपर आपत्ति पड़ी हुई है, उसका पुत्र और भाई मारे गए हैं, इसी विपत्ति के कारण उसे निर्वेद हुआ है। निर्वेद होने पर दैन्य चिंता अश्रु निपात आदि होते हैं। सो प्रकृत पद्य में रावण ने अपना अनौजस्य हीनता दीनता आदि कहकर अपना अपमान स्वयं प्रकट किया है, अतः यह दैन्य उसी निर्वेद का अनुभव है। इस प्रकार विपत्ति निर्वेद का कारण है और दैन्य उसका कार्य है। साहित्य में जिस भाव का वर्णन करना अभिष्ट होता है उसका साक्षात नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसके कारणों और कार्यों का वर्णन करके उसे व्यंजित करना पड़ता है। प्रकृत पद्य में भी निर्वेद का नाम नहीं है, वह ध्वनित होता है और उसके कारण एवं उसके कार्य का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। इस पद्य में निर्वेद मानने वाले लोगों का तर्क दलील और उपादन जो कुछ है वह सही, इसी पर आज हमें विचार करना है। जीवत्योः रावणः, इसी प्रकार वाक्य से तर्क वागीश जी दैन्य संबलित निर्वेद का ध्वनित होना बताते हैं। यही इनका सबसे प्रधान सहारा है, परंतु देखना यह है कि इससे दैन्य या निर्वेद क्यों कर किंचित व्यंजित होता है। इसका अक्षरार्थ है कि आश्चर्य है रावण जी रहा है, अर्थात रावण के जीते जी एक तापस राक्षस कुल का संहार कर रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अब सोचना यह है कि इस वाक्य में दीनता या दुख किधर से प्रकट होता है। किसी बड़े प्रसिद्ध योद्धा के घर में चोर घुसे और माल लेकर चलने लगे, उस समय वह डपट कर कहे कि अरे मेरे जीते जी ये क्षुद्र जीव मेरा माल लिए जा रहे हैं, जरा लाना तो मेरी तलवार। अब बताइए कि आप क्या समझेंगे। आप इससे यह ध्वनि निकालेंगे कि वह योद्धा विपत्ति के कारण दीन होकर निर्वेद से आंसू बहा रहा है, या यह समझ कर कि चोर को अति तुच्छ समझ कर उसने इस दुस्साहस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए इन्हीं उन्हें अच्छी तरह दंड देने की तैयारी कर रहा है। रावण ने तापस तपस्वी नहीं कहकर राम को अत्यंत क्षुद्र काय भिक्षुक बताया है, और यह एक ऐसे पुरुष के लंका में घुसकर राक्षस वध करने पर आश्चर्य प्रकट किया है, इससे उसके हृदय की दीनता क्यों कर किंचित व्यंजित हुई है। जिस प्रकार मुस्कुराहट और घबराहट अनेक कारणों से हो सकती है, न हर किसी मुस्कुराहट से प्रसन्नता व्यंजित होती है, न हर एक घबराहट से कुत्ते का पीछे दौड़ना ही प्रतीत होती है। कहने को घबराहट और मुस्कुराहट एक ही है, परंतु अवस्था भेद से देश काल आदि की परिस्थिति के अनुसार हर एक मुस्कुराहट और घबराहट का व्यंजन भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार एक ही शब्द वक्ता और बौद्धव्य की अवस्था के भेद से अनेक मानसिक भावों का व्यंजक होता है। शब्द एक ही शब्द से काम क्रोध वत्सला आतुरता भक्ति और आत्मसमर्पण आदि अनेक भाव व्यक्त होते हैं। रस क्रीड़ा के समय जब गोपियों ने कृष्ण कहकर पुकारा था तब इस शब्द से अनुराग प्रकट हुआ था, परंतु कृष्ण के जंगल में अंतर ध्यान हो जाने पर जब उन्होंने घबराई हुई अवस्था में कृष्ण कहा था तब इससे आरती व्यंजित हुई थी। मथुरा के अखाड़े के भीतर खड़े चाणूर ने जब यह शब्द कहा था तो उससे अनादर व्यक्त हुआ था, और कहीं वही कंस ने ललकारते हुए जब इसी शब्द का उच्चारण किया था तो उससे क्रोध प्रकट हुआ था। द्रौपदी ने भरी सभा में अपनी लाज जाते हुए जब यही शब्द कहा था तो इससे आतुरता पूर्ण शरणागति ध्वनित हुई थी। और ग्राह के फंदे में फंसे गजराज ने जब यह कहा था तो इससे भय तथा उद्वेग भी प्रकट हुए थे। यशोदा ने जब यही कहा था वत्सला व्यंजित हुई थी और नारद ने जब इसका उच्चारण किया था तब इसी से परम भक्ति और आत्मसमर्पण की ध्वनि निकली थी। शब्द एक ही था परंतु कहने वाले के ढंग से और उसके गले की काकू भी भिन्नता थी। कारण सुनने वाले और फौरन समझ लिया था कि कृष्ण कहने वाले के मन में कौन सा वाद्य उदय हो रहा है, परंतु यह वही संभव है जहाँ असली कहने वाला सामने हो। कागज पर लिखे केवल कृष्ण शब्द को देखकर यह कहना संभव नहीं कि उससे वक्ता के हृदय में कौन से भाव का आविर्भाव हुआ है। उसके लिए कुछ और परिस्थिति के जानने की भी आवश्यकता होगी। असली वक्ता को देखकर जो बहुत सी बातें प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात हो सकती है उन्हें यहाँ किसी शब्द के द्वारा जान लेने पर भी आशय आप असली भाव समझ सकेंगे। जब तक आपको यह मालूम नहीं हो कि गोपियों ने रास क्रीड़ा के समय यह शब्द शक्ति कहा है या जंगल में कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर तक, तब तक आप इसके उस असली व्यंग का पता न पा सकेंगे। अब जीवत्यहो रावण को देखिए। यह वाक्य दैन्य की अवस्था दशा में भी बोला जा सकता है और क्रोध की दशा में भी बोला जा सकता है और भी अनेक अवस्थाओं में कहा जा सकता है। अतः केवल इतने ही वाक्य को लिखा देखकर किसी व्यंग का फैसला नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ और परिस्थिति पर ध्यान देना होगा। हाँ, यदि खास रावण के ही मुंह से इसके सुनने का मौका मिलता है तो अलबत्ता बिना किसी दूसरी सहायता के व्यंग्यार्थ का बोध हो सकता था, परंतु यहाँ तो केवल कवि की प्रतिभा से उत्थापित वाक्य कागज पर लिखा गया रखता है। अतः इधर उधर दृष्टि दौड़ाना आवश्यक है। यह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में दीनता का संचार होने लगता है, परंतु इस नियम का अपवाद भी है। ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय भी नहीं घबराते। अभी कल की बात, जब सिखों के किशोर बालक दीवार में छू दिए जाने पर भी अपनी आन से नहीं डिगे थे। अब हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्य में रावण को किस रूप से चित्रित किया है। उसे विपत्ति पड़ने पर दैन्य में निमग्न हो जाने वाले साधारण प्राणियों के समान अंकित किया है या बड़ी से बड़ी विपत्तियों की आंधी और घोर घोर से शत्रुओं के घन गर्जन में पर्वत की तरह अटल रहने वाले विकट वीर के रूप में चित्रित किया है। वाल्मीकि रामायण ने जो रावण के चित्र खींचा है वह तो असाधारण वीर का ही है। जब रावण से सीता के लौटा देने और राम से संधि कर लेने की बात कही गई तो उसने जवाब दिया, अपि द्विधा विमज्जेय न नमेयम् तु कस्याचित। उसने अपनी तुलना फौलाद से की और कहा कि मैं बीच में दो टुक भले हो जाऊं, परंतु किसी के सामने झुक नहीं सकता। प्रकृत पद्य में कैसा भाव है यह आगे प्रकट होगा। अब इसी के साथ जरा दैन्य की दशा को भी याद कर लीजिए। हम दैन्य का लक्षण और कदाहरण बता चुके हैं। दैन्य निर्वेद का अनुभव है और निर्वेद का अर्थ है स्वावमानन अर्थात स्वयं अपना अनादर करना। इस दशा में मनुष्य अपने दोषों को देखने लगता है और अपने दोषों के कारण जिस जिस को कष्ट भोगना पड़ा है उसके ऊपर दया या पश्चाताप करके दुखी होने लगता है। राम ने जब सीता को बिना विचारे वनवास दिया तो उन्हें निर्वेद हुआ और उसमें उन्होंने अपने को क्षुद्र तथा पतित कहा एवं सीता की सरलता निरपराधता आदि का ध्यान करते हुए उनका दुख असीम हो गया। आप समझते हैं कि मेघ नाद और कुंभकर्ण के मारने पर रावण को निर्वेद हुआ था, परंतु वह क्या कहता है? वह कहता, मैं अत्यंत नीच और क्षुद्र हूँ। मैंने काम के वश में पड़कर पराई स्त्री चुराई और नीचता के निमित्त अपने इंद्र विजयी मेघनाथ जैसे पुत्र और त्रैलोक्य विजयी कुंभकर्ण जैसे भाई से हाथ धोया। इन बेचारों को मैंने वेकसूर कटवा दिया। इस पर अनर्थ का मूल मैं ही हूँ। मैंने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर अपना वंश नष्ट कराया और अपने माथे पर अमित कलंक का टीका लगवाया इत्यादि यदि रावण ने ऐसा कहा होता तो निश्चय ही उसका दैन्य प्रकट होता है। यह भी प्रकट होता कि उसे उसके हृदय पर आपत्ति का प्रभाव पड़ा है और यह भी मालूम होता कि उसे वास्तविक तत्व का ज्ञान हो गया है। उस दशा में इसे निर्वेद मानने से किसी को इनकार नहीं हो सकता था, परंतु प्रकृत पद्य की परिस्थिति तो एकदम भिन्न है। आप इसे आदि के से अंत तक एक एक अक्षर करके बड़े ध्यान से पढ़ जाइए, आपको एक भी अक्षर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे यह सिद्ध हो कि रावण अपने को दीनहीन या नीच बता रहा है। कहीं भी आपको यह प्रतीत नहीं होगा कि अपना अनादर कर रहा है। स्वावमानन का यहाँ कहीं नाम निशान तक नहीं है, फिर यह निर्वेद कैसा? फिर जिन्होंने इसके लिए अपने प्राण गंवाए हैं, जो इसके औरस पुत्र और सहोदर भाई थे, उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी यह नहीं कह रहा है। उनके लिए रोना और दुखी होना तो दूर रहा, यह तो उन्हें कठोरतम शब्दों से साफ साफ धिक्कार रहा है। धिक धिक संक्रजितम, कहने वाले के हृदय में आप निर्वेद की तलाश करने चले हैं। कुंभकर्ण तक को निकम्मा और बेकार कहने वाले के मन में आप दीनता टटोलने चले हैं। जो स्वर्ग को क्षुद्र ग्राम से अधिक नहीं समझता और उसकी स्वच्छंद लूट को भी कोई महत्व नहीं देता, जो परशुराम और बाली जैसे महावीरों को निग्रह करने वाले, दिव्यास्त्र संपन्न जैसे राम जैसे अतुल बलशाली शत्रु को भी क्षुद्र तापस समझ रहा है, क्या आप उसके हृदय में दीनता का पता पाने की आशा करते हैं? जो शत्रुओं की सत्ता को भी अपना तिरस्कार समझता है, उसके हृदय में दीनता या गर्व में कहकर अपने सब प्राचीन चरित्रों और सकल दिक्पाल विजयों की याद दिला रहा है, उसका हृदय अभिमान से पूर्ण कहा जा सकता है या दीनता से अभिभूत, जिसका आत्मोत्कर्ष यहाँ तक चढ़ा बढ़ा है कि भाई और पुत्र के साथ आप अपने शरीर भी अंगभूत भुजाओं को भी पृथक पुरुष की तरह फटकार रहा है, या क्या वह दिन है? या संभव है कि रावण के वंश नाश की भावना करके साहित्य दर्पण के टीकाकार श्री रामचरण तर्कवागीश के मन में दैन्य और निर्वेद का दौरा हो गया है, परंतु हमें यहाँ उनके हृदय की धड़कन की परीक्षा नहीं करनी है। हमें तो राक्षस राज रावण के मनस्वी मानस का यह पता लगाना है कि और यह देखना है कि कवि ने उसे कहां यहां किस रूप में अंकित किया है। दैन्य का उदाहरण जो अभी हम दे चुके थे आपको याद होगा। यदि राम सीता परित्याग पर खेद और दुख प्रकाशित करने के बजाय यह कहते कि धिक्कार है उस मूर्ख सीता को जो मुझे छोड़कर चली बनी, और लानत है नालायक लक्ष्मण को, तथा सौ सौ बार धिक्कार है मेरी इन व्यर्थ भुजाओं को जो जरा सी उस लंका नाम की तुच्छ ग्रामटिका के जय पर मोटर के टायर की तरह फूल कर कुष्पा हो रही है, इत्यादि। तो आप क्या समझते? अपने हृदय पर हाथ रखकर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच सच बताइए कि क्या आप उस दशा में इस वर्णन से दैन्य और निर्वेद का गंध भी पा सकते थे? अब आप तर्कवागी जी को क्या कहें और उनका नाम लेकर अक्ल के पीछे लठ लेकर दौड़ने वाले को क्या समझाएं? यदि रावण के हृदय में निर्वेद का उदय हुआ होता तो वह युद्ध करके मरता या सब कुछ छोड़ के लंगोटा लगाकर जंगल में तपस्या करता? अच्छा, अब लगे हाथों जरा गर्व अमर्ष क्रोध और असूया को भी समझते चलिए। रूपधन विद्यादि प्रयुक्तात्मोत्कर्ष ज्ञानाधि न परा अवहेलनम गर्भः, अपने रूप विद्या ऐश्वर्य बल बुद्धि आदि के उत्कर्ष का अति महत्व मानकर दूसरे को तुच्छ समझना गर्भ कहता है। अब आप पूर्वोक्त पद्य को फिर भी ध्यान पूर्वक पढ़िए और देखिए कि पहले ही वाक्य में जिसमें रावण ने शत्रुता को ही अपना तिरस्कार बताया है कितना गर्व टपकता है। उसे अपने बल पौरुष ऐश्वर्य आदि का इतना गर्व है कि उसे देखते हुए वह अपने शत्रुओं का नाम सुनना भी अपने लिए अपमानजनक समझता है। उसका शत्रु हो और वह फिर जीता रहे, यह उसे बर्दाश्त नहीं। अब आप ही निर्णय करें कि उसके रावण का गर्व व्यंजित होता है या उसकी दीनता द्योतित होती है। राम को तुच्छ समझना, स्वर्ग की लूट को क्षुद्र समझना, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वीरता को भी नगण्य समझना गर्व के सूचक है या दीनता के? प्रकृत्या अवज्ञानादि नाना पराधन जन्ययो मौनवाक्य पौरुष्य आदिकरणीभूतश्चित्तवृत्ति विशेषो अमर्षः, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान या अपराध के कारण उत्पन्न हुए मन की उस उग्र प्रवृत्ति को अमर्ष कहते हैं, जिससे मनुष्य या तो एकदम चुप हो जाता है अथवा कठोर शब्द कहने लगता है। आप इस लक्षण को पूर्वोक्त पद्य से जरा मिलकर देखिए तो सही। परोत्कर्ष दर्शनादिजन्यः परनिंदादिकारणीभूतश्चित्तवृत्ति विशेषो वसुया, दूसरे का उत्कर्ष देखकर उसे न सह सकने का कारण उत्पन्न हुई उस चित्त वृत्ति का नाम असूया है, जिसके कारण मनुष्य दूसरे की निंदा आदि करने लगता है। यह संभव नहीं कि रावण के नाम राम के लिए बाली बध परशुराम का निग्रह तथा समुद्र में सेतु बंधन आदि की बात सुनी ही न हो, और तो और मेघनाथ और कुंभकर्ण के वध की बात वह कैसे भुला सकता था। परंतु असूया के कारण वह नाम का उत्कर्ष सहन न कर सका और क्षुद्र तापस कहकर उनका अनादर करने लगा। तत्राप्यसौ तापसः, इस वाक्य से उसकी असूया प्रकट होती है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, शत्रु उसका आलम्बन है और शत्रु की चेष्टा से वह उद्दीप्त होता है। राम रावण के शत्रु हैं और उनकी चेष्टा कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध और राक्षस कुल संहार है, जिनका मुख्यतया वर्णन इस पद्य में है। रावण के क्रोध को प्रज्वलित करने वाली प्रचुर सामग्री यहाँ मौजूद है। उग्रता, अमर्ष, असूया आदि क्रोध के अनुभव है। क्रोध आने पर मनुष्य अपने उत्कर्ष का कथन तथा शत्रु का निरादर आदि करने लगता है। यह सब कुछ क्रोध की सामग्री प्रस्तुत होने के कारण पद्य से रावण का क्रोध ही प्रधानतया ध्वनित होता है, परंतु वह इतना परिपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे रौद्र रस की संज्ञा दी जा सके। यदि राम सामने होते, युद्धस्थल में यह घटना घटती, राम रावण का संग्राम होता और रावण के भुजंग ओष्ठ दर्शन, बाहुस्फोटन, आवेग रोमांच और गर्जन तर्जन भी यह पद्य में वर्णित होते, तब इससे रौद्र रस की अभिव्यक्ति हो सकती थी। परंतु यह साधन न होने के कारण केवल क्रोध का व्यंग्य है, रौद्र रस का नहीं। साहित्य के एक अति प्राचीन आचार्य, जिन्हें काव्य प्रकाशकार जैसे सरस्वती के अवतार भी अपने पूज्य गुरु के सदृश समझते हैं, और आज तक वे सभी अलंकार शास्त्र के आचार्य जिनका चरण चुंबन करते आए हैं, उन श्रीमद अभिनव गुप्त पदाचार्य ने भी इस पद्य में क्रोध की ही ध्वनि मानी है। परंतु यह हमारा मतलब हरगिज नहीं है कि एक प्राचीन आचार्य के अनुकूल होने के कारण आप हमारी बात मान लीजिए। साहित्य शास्त्र व्याकरण और वेद की तरह परतंत्र नहीं है, न तो यहाँ व्याकरण के पाणिनि कात्यायन पतंजलि की तरह पद पद पर किसी का नाम पर दुहाई दी जाती है, और न वेद की तरह मात्रा बिंदु विसर्ग का परिवर्तन करना ही पाप समझा जाता है। यह तो एक प्रकार की दर्शन है। यहाँ युक्ति तर्क कल्पना और प्रकृति परिशीलन के आधार पर दिए गए प्रमाणों के प्राबल्य है। काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र और शब्द शास्त्र सभी से यहाँ काम पड़ता है, परंतु प्रकृति के विरुद्ध किसी भी बात नहीं सुनी जाती। हम अपने मत को किसी आचार्य की दुहाई देकर स्वीकार करना कदापि नहीं चाहते। यदि आपका ईश्वर ने प्रतिभा और विवेक के नक्षत्र दिए हैं, तो हमारी दी हुई युक्तियों और आपत्तियों पर विचार कीजिए। यदि हमारी बात समझ में आए तो मानिए, न आए न मानिए। धन्यालोक के रचयिता श्री आनंद वर्धनाचार्य ने भी पद में क्रोध को व्यंग माना है। उसी की टीका के अभिनव गुप्त पदाचार्य ने उसे अस्पष्ट किया है। इन्होंने तो इस पद्य के संबंध में यहाँ तक कहा कि यदि इसके तिल तिल भर टुकड़े करके देखा जाए तो भी इसमें उत्तरोत्तर व्यंजना का चमत्कार बढ़ता ही जाएगा, परंतु यहाँ उन सब बातों का छेड़ना शक्य नहीं। इसके लिए संस्कृत बिना पढ़े काम नहीं चल सकता। यहाँ तो हम इस संपूर्ण पद्य के व्यंग, निर्वेद और क्रोध के ऊपर ही दो चार बात कहनी थी, सो कह चुके।
यद्यपि लेख कुछ लंबा हो गया है, परंतु विधेय विमर्श के विषय में भी यही कुछ कह देना आवश्यक है। यदि आलस्य वश हमने इसे यूं ही छोड़ दिया तो फिर कौन इस पर लिखेगा और कौन कहां से पढ़ेगा। यह ऐसा विषय है कि आज तक के उपलब्ध किसी भी साहित्य ग्रंथ में इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है। अच्छा सुनिए, विधेयाभिमर्श शब्द विधेय और अभिमर्श इन दो शब्दों के समास से हो बना है। विमर्श का अर्थ है विचार और परामर्श। विधेय का जहाँ प्रधान रूप से परामर्श न किया जाए वहाँ यह दोष होता है। वाक्य में दो अंश होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। विधेय इन में प्रधान होता है। वाक्य के द्वारा जो अपूर्व बोध होता है उसका निर्देश इसी से होता है। यदि इसको अपने स्थान से हटाकर उद्देश्य के स्थान पर बिठा दिया जाए तो इसका प्राधान्य छिप जाता है या नष्ट हो जाता है। उस दशा में विधेय विमर्श दोष होता है। राजा की शोभा सिंहासन पर बैठने से ही होती है। यदि उसे वहां से हटा के चौकदार की जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो अवश्य खटकेगा। तो इसलिए यह कहा है, अनुवाद्यमनुक्तैव न विधेयम उदीरयेत न ह्यलब्धास्पदं किंचित कुत्रचित्त प्रतितिष्ठति। अनुवाद में अर्थात उद्देश्य का निर्देश बिना किए विधेय नहीं बोलना चाहिए, यही इस पद्य का भाव अर्थ है। पहले उद्देश्य कहना चाहिए, उसके बाद विधेय, उद्देश्य से पहले विधेय नहीं बोलना चाहिए। देवदत्त जाता है, इस वाक्य में देवदत्त उद्देश्य है और जाना विधेय है, अतः जाता है इसके पूर्व देवदत्त का बोलना आवश्यक है। यदि उसे उलट कर जाता है देवदत्त इस प्रकार कर दिया जाए तो विधेय विमर्श दोष होता है। और प्रकृत पद्य में अयम एव न्यकार इस प्रकार कहना उचित है। अयम एव से वर्तमान दशा अरिसत्व को सूचित करके उसमें न्यकारत्व का आरोप किया जाता है और वही वहाँ विधेय होता है। अतः इस विधेय न्यकार से के पूर्व अयम एव इस उद्देश्य को अवश्य आ जाना चाहिए, लेकिन उक्त पद्य में यह क्रम उलट गया है। न्यकारो ह्यामेव इसमें विधेय का विमर्श पहले हुआ और उद्देश्य पीछे पड़ गया, अतः यहाँ विधेय विमर्श दोष हुआ है। यह ठीक है कि उद्देश्य को विधेय से पूर्व आना चाहिए, परंतु यह साधारण नियम है। जिस प्रकार अन्य समस्त नियमों का अपवाद हुआ करते हैं उसी तरह यह भी अपवाद से खाली नहीं। राजा घर के भीतर जिस नियम से बैठा करता है, शिकार या रणस्थल में उसका उस तरह बैठा रहना संभव नहीं, वह अपवाद का स्थल है, साधारण नियम का नहीं। राजा जब अपने मंत्री आदि में विवाह में सम्मिलित होता है तब उसे भी वर के पीछे चलना पड़ता है, वहाँ वह साधारण नियम नहीं चलता। उद्देश्य विधेयक की स्थापना के संबंध में ही यह बात है। अनेक ऐसे स्थल होते हैं जहाँ विधेयक का उद्देश्य के पूर्व रखना अनिवार्य रूप और आवश्यक हो जाता है। यदि वैसा न किया जाए तो वाक्य का तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो कुछ भाव अभिव्यक्त करना है वह हो ही नहीं सके। विधेय का प्राधान्य उसके उद्देश्यानंतर निर्देश में ही नहीं है, बल्कि समुचित स्थान पर उसका निर्देश करने में है। जहाँ विधेय के रखने में अभिष्ट भाव अभिव्यक्त हो सकता है वहाँ से उसके हटाने में विधेय विमर्श होता है। केवल आगे पीछे मात्र से ही, आगे पीछे की बात एक साधारण नियम है, परंतु विशेष स्थलों में इसका परिवर्तन अनिवार्य होता है। उदाहरण, देवदत्तो गच्छति अर्थात देवदत्त जाता है। इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण नियम की बात हम कह चुके हैं, अब विशेष स्थल का ध्यान दीजिए। आपने देवदत्त को कहीं भेजा परंतु आपको संदेह बना रहा कि शायद जाए या न जाए। उस दशा में कोई आदमी आपका संदेह दूर करने के लिए गच्छति देवदत्त इस प्रकार बोलेगा। यहाँ गच्छति जो विधेय है उसके पूर्व निर्देश में उसमें निश्चितता सूचित होती है और गच्छत्येव देवदत्त ऐसा तात्पर्य निकलता है। एवं मात्म संदेह कार्षो यह इसका व्यंग है। जो कुछ काको विशेष से परिस्फुट होता है इस वाक्य को बोलने वाला गच्छति पर जोर देगा और उसे विशेष कंठ ध्वनि से करेगा। इसी का नाम काकु है। इसी और इसी से भाव विशेष के व्यंजन में सहायता मिलती है। यदि आपको संदेह होने लगे कि देवदत्त मुझसे लिया हुआ ऋण चुकाएगा या नहीं, तब समाधान करने वाले यही कहेंगे कि दास्यत्यसौ इन वाक्यों में दास्यति और गच्छति को यदि कर्तृपद के बाद रखा जाए तो तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य है। वहीं रहकर वह अपने व्यंजनीय अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। कहीं कहीं विधेय की अविलंब अनुष्ठेयता सूचित करने के लिए और उद्देश्यगत हेतुता का प्रतिपादन करने के लिए विधेय का उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। जैसे गृहताम गृहताम पापाम बध्यताम बध्यताम सठः यज्ञसेनिहरः शूद्रो न्यकारः नोवस्य जीवनम्। पांडवों की अनुपस्थिति में वन में से द्रौपदी को पकड़कर जब जयद्रथ भागा था तब उसका पता पाकर पांडवों ने उक्त वाक्य कहे थे। यहाँ गृहता विधेय है, परंतु ग्रहण किया कि अति शीघ्र आवश्यकता सूचित करने के लिए उसे उद्देश्य से पूर्व रखा गया है। पाप में हेतुता भी सूचित होती है। पापत्वात अयम त्वरिततरम गृहताम, यह वक्ता का तात्पर्य है। यदि इस वाक्य को बदल दिया जाए और उद्देश्य को विधेय के रूप में पूर्व रख दिया जाए तो असली तात्पर्य ही नष्ट हो जाएगा, उससे यह व्यंग अर्थ निकल ही न सकेगी। उत्तर वाक्य में भी सठत्व में बध और बंधनत्व का हेतुत्व और बंधन का अतिशीघ्र संपादत्व छिपा है। वह तभी प्रकट हो सकता है जब विधेय को उद्देश्य से पूर्व निर्दिष्ट कर दिया जाए। कहीं कहीं विधेयगत वैशिष्ट्य और अतिशय का सूचन करने के लिए भी उसका पूर्व निर्देश किया जाता है, जैसे इसी पद्य के चतुर्थ चरण में किया गया है। नह के बहुवचन में अपनी कुलीनता शक्तिमता तेजस्विता देवांशता आदि के द्वारा अपना महत्व सूचित किया है। अस्य के एक वचन में जयद्रथ की शुद्रता तथा नीचता व्यंग है और याज्ञसेनी शब्द से द्रौपदी की पवित्रता व्यंग है, एवं इसी कारण एक अति शुद्र नीच के द्वारा अपने जैसे महामहिम शालियों की यज्ञोद्भूत पत्नी के हरण का अति अनौचित्य होने के कारण उसका पता जीता रहना भी पांडवों का तिरस्कार है, उसे अवश्य मारना ही चाहिए, यह व्यंग है। यदि यहाँ अस्य जीवनम नो न्यकारः कहा जाता तो जीवन में न्यकारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक अलंकार का बीज है, परंतु न्यकारः का पूर्व निर्देश करने से आरोप के बजाय अर्धवसान की प्रतीति होने लगती है। उद्देश्य का पूर्व निर्देश होने से उसका पूर्ण स्वरूप सामने आ जाने के कारण विषय निर्गुण नहीं हो पाता है और अनिर्गुण विषय में जीवन और न्यकार का अभेद प्रतीत होने के आरोप होता है, परंतु न्यकार के पूर्व निर्देश की विषय की पूर्ण प्रतीति और विषय का निगण्य हो जाता है, अतः आरोप के बजाय यहाँ अध्यवसान प्रतीत होता है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार के बीज है। इस प्रकार का अतिशय जहाँ बोधित करना अभिष्ट होता है वहाँ विधेय को उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी स्त्री के शील सौंदर्य आदि का वर्णन करें तो यम गेहे लक्ष्मी ही कहकर काम चला सकते हैं, उससे उस स्त्री के लक्ष्मीत्व का आरोप सिद्ध होता है, परंतु यदि किसी ने उस स्त्री का चुड़ैल बताया और अमंगल कारणी कहा तो आपका काम केवल इस लक्ष्मी के आरोप में से न चल सकेगा। वहाँ आपको कहना होगा लक्ष्मी खलवियम गेहे, यहाँ लक्ष्मी के पूर्व निर्देश में लक्ष्मीत्व आरोपित नहीं बल्कि अध्यवसित होता है, और इसे निंदा करने वाले का झूठा होना उस पर फटकार और आपकी तबीयत का जोश भी ध्वनित होने लगता है। यह बात पहले वाक्य से व्यक्त नहीं होती है। इस प्रकार के और भी अनेक स्थल होते हैं जहाँ विशेष कारण वश विधेय का पूर्व निर्देश आवश्यक होता है, और यदि वैसा न किया जाए तो उसका प्राधान्य नष्ट हो जाता है। जिन लोगों ने न्यकारो एवमेव इस पद्य में विधेया विमर्श दोष बताया है उन्होंने साधारण नियम और सामान्य अर्थ को ही ध्यान में रखा है, इस दशा में ही दोष मानना ही पड़ेगा। परंतु यदि पूर्वोक्त विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो इस अत्युत्कृष्ट व्यंग प्रधान पद्य का प्राण है तो फिर यह दोष यहाँ नहीं रहता, और न्यकारो या मेव में अतिशयोक्ति के द्वारा न्यकार का अतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि में अरयह तापसह आदि अनेक पद करते हैं, जिनके व्यंग का वर्णन साहित्य दर्पण आदि अनेक ग्रंथों में मौजूद है। बृथक्षु नैह कीमे भीर्भूचैः, इस अंश में भी साहित्य के अनेक ग्रंथकारों ने विधेया विमर्श माना है। इससे वृथात्व की विधेय है, फिर उसको समास के भीतर डालकर उपसर्जन क्यों किया, यह न केवल अर्थ पुनरुक्ति हुई बल्कि विधेय विमर्श भी हो गया है। हम इस मत में सहमत नहीं। वृथो अक्षुण्य के वृथा शब्द से उच्छुनत्व का वृथात्व बताया है और किमेर भी भुजई ने भुजों का वृथात्व बताया है, अतः यहाँ कोई दोष नहीं। अन्य के वृथात्व से किसी अन्य का वृथात्व कैसे पुनरुक्त हो जाएगा? किमे भी से भुजों का वृथात्व विधेय है, अक्षुण्णत्व का नहीं। वृथो अक्षुण्णय में जो वृथात्व है उससे भुजों में कोई संबंध ही नहीं, उसका संबंध है उच्छुण्णत्व के वृथात्व से। यहाँ विधेया विमर्श का क्या जिक्र है? नकारो यमेव इत्यादि पद अति प्राचीन है, यह किस ग्रंथ का है इसका कुछ पता नहीं चलता है। हनुमानाष्टक में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है, परंतु हनुमानाष्टक में तो भानमति का कुनबा है। तमाम इधर उधर के पद इस कांजी हौस में बंद है, इस पद्य का भी यही हाल है। जैसे कांजी हौस में पड़े पशु की दुर्गति होती है, वैसे ही वही उसका भी हुई है। इस सबसे पहली बात यह है कि वहाँ इस पद्य के सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर जोड़ दिया गया है। पूर्वार्ध के स्थान में उत्तरार्ध और उत्तरार्ध के स्थान में पूर्वार्ध रख दिया गया है। फिर स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोन छुन्नैह किमभीर भुज्जैह, इसकी जगह स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठह न परैह पीनैह किमभीम अर्जुनः, यह पाठ कर दिया गया है। जिसे वृथक शून्य के ऊपर तमाम साहित्य ग्रंथ लगभग रहे हैं वहाँ उसका पता ही नहीं। इसी से हमारा ख्याल है कि इस पद्य हनुमान नाटक का नहीं, 100 वर्ष पुरानी पुस्तकों तक में इसका उल्लेख पाया जाता है। जिस कवि ने यह बनाया है इसका निर्मित ग्रंथ निसंदेह अद्भुत रहा होगा। आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में तत्व ज्ञान आपत्ति और ईर्ष्या के उत्पन्न निर्वेद के अलग अलग उदाहरण दिए हैं। उन्होंने ईर्ष्या से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में इसी पद्य का उल्लेख किया है। यही इस निर्वेद भ्रम के प्रवाह का मूल स्रोत प्रतीत होता है। काव्य प्रकाश के अनेक टीकाकार तथा स्वयं श्री तर्कवागीश जी इसी भ्रांत परंपरा के शिकार हुए हैं। इसी की देखा देखी अनेक आचार्य बिना किसी सूक्ष्म विचार के इस पद्य में निर्वेद की ध्वनि बताते चले गए हैं, परंतु इस पद्य में निर्वेद व्यक्त होना संभव नहीं है, यह हम स्पष्ट कह चुके। तत्व ज्ञान पदेश्यार्ध निर्वेद स्वावमाननम तत्र चिंता अश्रु निश्वाश्च वैक्षणियोश्च वासदीनताः, यह 10 रूपक में निर्वेद का लक्षण लिखा है। इस श्लोक के प्रथम चरण में निर्वेद के कारणों का निर्देश है और उत्तरार्ध में उसके कार्यों का उल्लेख है। लक्षण केवल द्वितीय चरण में कहा गया है। स्वमानन निर्वेद है, यह लक्षण हुआ। स्वमाननम षष्ठी समास है, स्वस्य में षष्ठी है, यह कर्ता में भी हो सकती है और कर्म में भी। अवमाननम यह भाव प्रत्यांत है, अतः रहस्य स्वस्य उसका कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी। कर्ते कर्मणो कृति इस पाणिनि सूत्र के अनुसार कर्ता और कर्म इन दोनों में यहाँ षष्ठी हो सकती है। श्लेष अथवा आवृत्ति के द्वारा ये दोनों अर्थ यहाँ वक्ता को विवक्षित है, अतः प्रकृत लक्षण का अर्थ हुआ स्वकर्तृकम् स्वविषयकम् अवमाननम् निर्वेदः, अर्थात अपने आप अपना तिरस्कार करना निर्वेद कहता है। केवल स्वकर्तृक अथवा केवल स्वकर्मक अवमानन को निर्वेद नहीं माना जा सकता। कल्पना कीजिए कि देवदत्त ने किसी की ताड़ना या भर्त्सना की, तो क्या आप उस ताड़न भर्त्सन को देवदत्त का निर्वेद मानेंगे? और क्या किसी अन्य पुरुष का तिरस्कार करने वाले यह देवदत्त निर्वेद कहेगा? यदि केवल स्वकर्तृक अवमानन को निर्वेद माना तो यह अतिव्याप्ति होगी। देवदत्त पूर्वक अवमानन को देवदत्त का निर्वेद मानना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि केवल स्वकर्मक अवमानन को निर्वेद माना गया तो देवदत्त के द्वारा तिरस्कृत अन्य पुरुष को निर्वेद माना पड़ेगा। किसी अन्य के द्वारा किए हुए तिरस्कार भी निर्वेद कहने लगेगा। यह और बात है कि अन्य कर्तृक तिरस्कार के बाद कोई पुरुष अपनी असमर्थता का अनुभव करके स्वयं अपना अनुमान करने लगे और उसमें निर्वेद व्यक्त हो, परंतु अन्य कर्तृक तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता। अन्य कर्तृक तिरस्कार के बाद तिरस्कृत पुरुष के हृदय में क्रोध भी हो सकता है, अमर्ष, गर्व, असूया और मान भी हो सकता है एवं किसी के हृदय में तिरस्कार के अनंतर निर्वेद भी हो सकता है, परंतु ये सब बिल्कुल भिन्न वस्तु है। इनकी उत्पत्ति अन्य कर्तृक तिरस्कार के बाद होती है, ये स्वयं तिरस्कार स्वरूप नहीं है। सारांश यह कि अन्य कर्तृक तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता। इस दोनों अतिव्याप्तियों के बचाने के लिए स्वकर्तृक विषयक अवमानन को ही निर्वेद मानना आवश्यक है। अतः पूर्वोक्त लक्षण के निश्लेष अथवा आवृत्ति के द्वारा उक्त दोनों अर्थों की विवक्षा मानना अनिवार्य है। स्वयं अपना तिरस्कार करना निर्वेद का स्वरूप है और वह तत्व ज्ञान आपत्ति अथवा ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न होता है एवं इसके उत्पन्न होने पर चिंता, अश्रुपात, वैवर्ण्य और दीनता आदि होते हैं। हतकेन मया वनांतरे इत्यादि पूर्वोक्त पद्य निर्वेद का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेरे जैसे नीच पापी ने उस कमल नयनी को बिना विचारे घोर वनवास दे दिया। अब सती मुझसे उसी तरह सदा के लिए दूर हो गई जैसे पतित पुरुष से विद्या दूर हो जाती है। इस पद्य में सीता का परित्याग करने के बाद राम स्वयं अपना तिरस्कार कर रहे हैं। यह निर्वेद पत्नी वियोग तथा लोकोपवाद रूप विपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है और इससे राम को चिंता, अश्रु निपात, निश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है। तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में मृत्यु, कुंभ, बालूह, कारंध इत्यादि पूर्वोक्त पद्य दिया गया है। मैंने मिट्टी के घड़े के समान नश्वर विषय सुख के लिए अपना जीवन रूप अमूल्य दक्षिणावर्त शंख चूर्ण कर डाला। इस पद्य में वक्ता अपने को स्वयं धिक्कार रहा है। मिट्टी के घड़े का छिद्र बंद करने के लिए दुर्लभ शंख को चूर्ण की डालना कितनी बड़ी मूर्खता है। आज तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद की दशा में वक्ता अपनी इसी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा है। राग्यो विपद बंधु वियोग दुखः देश्ययु चित दुर्गम ममाग्र खेदः आस्वाद्यते स्याः कटु निष्फलायाः फलम् मय्यैत चित्त चिरंजीविताया। इस पद्य में विपत्ति के कारण दुख भोगने वाले प्रकट धृतराष्ट्र या तादृश अन्य कोई प्रकट बंध अपनी लंबी आयु के लिए रो रहा है, न इतने दिनों तक जीते न ये सब दुख देखने पड़ते इत्यादि। लब्धा श्रिय सकल काम दूधास्ततः किम दतम पदम शिरसे विद्विषताम ततः किम इत्यादि पद भी तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में दिए जा सकते हैं। इस पद में कर्ता और कर्म के स्थान पर अस्मत शब्द के रूपों का अध्याहार करने से निर्वेद का स्वरूप स्फुट होता है। अन्य नकारो हेमयोग को देख करके और यह पता लगाइए कि इसमें रावण ने अपने तिरस्कार किया है या नहीं। दूसरों का धिकारना और जिन्होंने अपने लिए ही प्राण दिए हो उन्हें इस प्रकार कटु वचन कहना क्या निर्वेद की दशा में संभव है? शायद कोई यह कह बैठे कि यहाँ जो आरंभ में तिरस्कार मौजूद है, रावण कह रहा है कि शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है। जब हम स्वयं शत्रुओं की सत्ता को अपने तिरस्कार बता रहे हैं, उसके शत्रु मौजूद में ही और साफ नकार शब्द तिरस्कार का वाचक इस पद्य में विद्यमान है, तो फिर इससे बढ़कर और प्रमाण क्या चाहिए? क्या इतना पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना तिरस्कार नहीं कर रहा है? जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण अपना स्वयं तिरस्कार कर रहा है, तब कौन कह सकता है कि यहाँ निर्वेद नहीं? इसमें निर्वेद को छिपाना तो सूर्य पर धूल फेंकने के समान होगा इत्यादि। हम कह चुके हैं साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है, क्योंकि यहाँ अविधा वृत्ति की कोई कद्र नहीं, वह यहाँ ग्राम्य वृत्ति कहती है। यहाँ वाक्य के वाच्य अर्थ को प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यंग अर्थ प्रधान माना जाता है। यह वक्ता के वाक्य का नहीं अपितु उसके हृदय का तात्पर्य देखना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि वक्ता का उक्त वाक्य फिर उसका वाच्य अर्थ चाहे जो कुछ भी हो उसके कौन से मनोभाव का सूचक है। नकारो ह्यमेव में पद्य में साफ साफ तिरस्कार वाच्य है। रावण अस्पष्ट शब्दों में शत्रु सत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परंतु हमें देखना यह भी कि उसके इस वाक्य का व्यंग अर्थ क्या है, उसी की यह प्रधानता रहेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि यह वास्तविक तिरस्कार नहीं है, बल्कि शत्रु सत्ता में तिरस्कार सत्व का आरोप है। जिस प्रकार मुख में चंद्रत्व का आरोप या अध्यवसान कर लेने पर भी वह वास्तविक चंद्रमा नहीं हो सकता, उसी प्रकार आरोपित तिरस्कारत्व से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं हो सकता। अतः देखना यह है कि रावण शत्रु सत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझता है, और इसके द्वारा हम ऐसा समझने से उसके हृदय का निर्वेद व्यंजित होता है या और कुछ। एक बाके हेकड़ का कहना है कि यदि किसी ने मेरी उंगली भी उठाई तो मैं उसका तिरस्कार समझता हूँ और उंगली उठाने वाले का हाथ काट लेना उचित समझता हूँ। दूसरे अकड़ुखा कहते हैं कि अगर कोई मेरी तरफ आंख उठाने तो मैं अपनी हतक समझता हूँ और उसकी आंख निकाल लेना मुनासिब समझता हूँ। अब देखना यह है कि क्या इन दोनों वाक्यों में वक्ता वस्तुतः अपना तिरस्कार कर रहा है अथवा अपनी अलौकिक वीरता को ध्वनित करके अपने मानसिक गर्व का परिचय दे रहा है। समझना यही है कि उक्ति वक्ता के हृदय से निकलती निर्वेद या गलानी प्रतीत होती है अथवा इसके विरुद्ध कुछ और। किसी की ओर देखना या उंगली उठाना साधारण बात है, देखने और उंगली उठाने में ये लोग तिरस्कारत्व का आरोप क्यों कर रहे हैं, क्या दीनता के कारण अथवा गर्व के कारण। यूपी में एक प्रसिद्ध नवाब साहब थे जो अभी हाल ही में मरे हैं, जिन्हें गाने बजाने और नाचने का शौक था। इतना ही नहीं, वो आपको सारगित बनाने का भी पूरा मिराक था। बड़े बड़े उस्तादों के जो आपके दरबार में किसी तरह जा फंसे आपने गड़ा बांध दिया। आप जब नाचने खड़े होते तब यह हुक्म रहता कि सब लोग हुजूर के पैरों पर नजर रखें। यदि किसी कमबख्ती के मारने आपके मुंह की तरफ ताक दिया तो आप अपना अपमान समझते और ताकने वाले को कोड़े या बेत लगवा देते। अब जानना यह है कि आपने मुंह की ओर देखने को जो यह नवाब साहब अपना तिरस्कार समझते थे या देखने में जो उन्होंने तिरस्कारत्व का आरोप कर लिया था, क्योंकि किसी के मुंह की ओर ताकना वास्तविक तिरस्कार तो है नहीं, सो क्या दीनता या निर्वेद के कारण अथवा अपनी शान की बहुत ऊंचा समझने के कारण। शत्रु संसार में सभी के होते हैं। आजाद शत्रु युधिष्ठिर और महर्षि वशिष्ठ के भी शत्रु थे। शत्रुओं का होना कोई तिरस्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी शत्रु सत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझता रहा है। शत्रु सत्ता में तिरस्कार का आरोप वह क्यों कर रहा है। आखिर उनमें कौन सी विशेषता है जिसके कारण शत्रुओं की सत्ता ही उसके लिए तिरस्कार स्वरूप बन गई है। इस प्रश्न का उत्तर आपको रावण की इसी पंक्ति में पढ़े हुए में पद की व्यंजना में मिलेगा। धन्य ध्वन्यालोक में इस पद की व्यंजना पाते हुए लिखा है कि मैं यदरश्य इति सुपसंबंध वचनाम अभिव्यंजकत्वम, अर्थात मैं और अरयह इन पदों में सुप संबंध और वचन के द्वारा व्यंग अर्थ प्रतीत होता है। इस पर टीका करते हुए श्री अभिनव गुप्त पदाचार्य लिखते हैं, ममारयः इति मम शत्रु दभावो नोचित इति संबंधना औचित्यम क्रोध विभावम ध्यनत्ति, अर्थात मेरे शत्रु हो यह अत्यंत अनुचित है। इससे रावण के हृदय का क्रोध व्यंजित होता है। यह तो हुई पुष्टत्वम प्रमाण की बात। अब आप इसे उत्पत्ति के द्वारा यूँ समझिए। रावण कहता है कि मेरे शत्रु हो और फिर वे जाते रहे, यह अत्यंत अनुचित और अत्यंत आश्चर्य की बात है। जानते हो मैं कौन हूँ। मेरे भय से इंद्र और वरुण थर थर कांपते हैं। यमराज को मेरी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। कुबेर का पुष्पक विमान मैंने छीन लिया। समस्त सुरासुरों का दर्प मैंने चूर्ण कर दिया। ऐसा मैं और उसके पुत्र हूँ, शिव शिव, और फिर वे जीते रहे। ये सब बातें मैं पद के संबोधिन अनौचित्य से व्यंजित होती है। रावण ने अपने पुराने अवदान और पुरुष की याद इसमें पद में दिलाई है एवं उस महत्व की ओर इशारा करते हुए अपने साथ शत्रु संबंध का अनौचित्य सूचित किया है। इसके बड़े इतने पराक्रमी ऐसे भयानक त्रैलोक्य रावण के शत्रु हूँ, यह कितनी अनुचित बात है। यही यहाँ में व्यंग का अर्थ है। इसी लोकोत्तर महत्व को देखते हुए वह शत्रु सत्ता को ही अपना अपमान समझता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पूर्वोक्त नवाब साहब अपने मुख के ओर ताकने को अपना अपमान समझकर देखने वाले को कोड़े लगवाया करते थे, जिस प्रकार उक्त नवाब साहब ने अपने को तिरस्कृत समझने में वास्तविक तिरस्कार का कोई संबंध नहीं, उस सिर्फ उसके मन की एक शान है। वह अपने को कोई लोकोत्तर परिषदा समझकर ऐसा करते हैं, उनके इस तिरस्कार समझने से उनके मन में दीनता गलानी या निर्वेद की कहीं गंध नहीं दिखती, बल्कि उनका अभिमान शौर्य और गर्व ही उक्त घटना से व्यक्त होता है। उसी प्रकार शत्रु सत्ता को अपना अपमान समझने वाले रावण के प्रकृत वाक्य से भी हृदयगत गर्व और क्रोध ही व्यक्त होता है, निर्वेद या दीनता हरगिज नहीं। मतलब यह है कि निर्वेद के लिए एक तो वास्तविक स्वभावमानन की आवश्यकता है, कल्पित आरोपित या अध्वसित तिरस्कार में निर्वेद नहीं हुआ करता। दूसरे वाक्य का प्रधान तात्पर्य जहाँ स्वावमानन में होता है वही निर्वेद हुआ करता है। तिरस्कार वाच्य होने पर भी यदि वाक्य का प्रधान तात्पर्य तिरस्कार में नहीं है तो वहाँ निर्वेद कदापि न होगा। प्रकृत पद्य में यद्यपि तिरस्कार वाच्य है, परंतु प्रथम तो यह वास्तविक तिरस्कार नहीं, दूसरे वह प्रधान तात्पर्य का विषय भी नहीं। जब तक आप मे पद में व्यंग अर्थ को ध्यान में न लावे तब तक यह समझ में नहीं आ सकता कि शत्रु सत्ता का तिरस्कार का रूप क्यों दिया गया है। उसके बिना शत्रु सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप अनुत्पन्न है। और जब मे के व्यंग के द्वारा रावण की अलौकिक पुरुषार्थ श्रोता के मन में भाषित हो गया और उसने यह समझ लिया कि रावण अपने को इतना बड़ा महिमशाली समझने के कारण शत्रु सत्ता को भी अपना न्यायकार समझ रहा है, तब उस दशा में किसी मूर्ख के हृदय में भी यह बात नहीं बैठ सकती कि इस समय रावण दिन दुखी निर्विण और चिंतित होकर आंसू बहाता हुआ स्वयं अपना तिरस्कार कर रहा है। उस समय तो उसे रावण के हृदय के मूर्तिमान गर्व और क्रोध ही सामने खड़ा दिखेगा। जिन जिन प्राचीन आचार्यों ने इस पद्य में निर्वेद की ध्वनि मानी है उन्होंने इसके वाच्य अर्थ को देखकर स्पष्ट अर्थों में तिरस्कार का उल्लेख देखकर ही ऐसा किया है। उन्होंने यह बात पर विचार नहीं किया कि यह तिरस्कार वास्तविक नहीं प्रत्युत आरोपित मात्र है। दूसरे यह कि इस आरोप के लिए जो मे पद का व्यंग प्राणभूत है उसके सामने आते ही निर्वेद हवा हो जाता है। निर्वेद की ध्वनि मानने वाले प्रथम नेता संभवतः आचार्य धनंजय ही हैं। आप महाराज मुय की सभा में पंडित थे और इस प्रकार कम से कम एक सहस्त्र वर्ष से इस पद्य के व्यंग्यार्थ के सामने संबंध में भ्रांत धारण का प्रवाह चला आ रहा है। आचार्य धनंजय अलंकार शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी परिनिष्ठित विद्वान थे। आपको तथा आपके अनुयायी अन्य आचार्यों को हम अत्यंत आदर और पूजा की दृष्टि से देखते हैं एवं अपने अति क्षुद्र ज्ञान लव को इन्हीं की कृपा का फल समझते हैं, परंतु यह सब कुछ होने पर भी हम अपनी बुद्धि और विवेचना को अपनी किसी के नाम पर बेच देने को तैयार नहीं। जो हमारा मत है उसे दृढ़ता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने पाठकों से भी यह अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी स्वतंत्रता प्रतिभा के आधार पर हमारी बातों को तारतम्य का विचार करें। संतो विविच्याह अन्यतरद भजन्ते मूढ़ परप्रत्यनेय बुद्धि। हाँ, यदि प्रकृत पद्य के भावार्थ को निम्नलिखित रूप देकर पद्य बद्ध किया जाए तो अलबत्ता इससे ईर्ष्या जन्य निर्वेद की ध्वनि निकलने लगेगी। यथा दिगिश अरपोध्यलनान सुरदेशो निहंत्यहो मानुषः एष तापसः विकुंठिताः स्वर्ग विलुंठनो भेदः भोजाश्च मेहंतः दुरस्यो विधः। अर्थात दिग्पालों के दर्प का पालन करने वाले दिग्विजयी देव विजयी राक्षसों के यहाँ भिखारी नरकीट मार रहा है और स्वर्ग की अनवरत लूट करने से उद्भट ये मेरी भुजाएं कुंठित हो गई है। हाय हाय, प्रारब्ध अनिवार्य है। अब इस दशा में यह निर्वेद का उदाहरण हो जाएगा। हंतः दुरस्तयोः विधि, इस अंतिम वाक्य के प्राख्य प्रारब्ध की निंदा के द्वारा अपनी असमर्थता, विषाद और स्वावमानन प्रकट होता है। मनुष्य एस तापसः के द्वारा रावण की राम के प्रति ईर्ष्या प्रतीत होती है। वह राम के लोकोत्तर पराक्रम को अवश्य जानता है, परंतु ईर्ष्या के कारण उन्हें तापस और मानुष बता रहा है। इस प्रकार यह ईर्ष्या जन्य निर्वेद का उदाहरण होगा। जिन्होंने इसके लिए प्राण दिए हैं, उनके प्रति सहानुभूति और उनके द्वारा उनकी मृत्यु का खेद भी रावण के हृदय में प्रकृत पद्य के प्रथम चरण में भाषित होता है। अतः इससे ईर्ष्या और निर्वेद की सामग्री एकत्रित है, परंतु न्यकार इत्यादि की रचना इसमें एकदम भिन्न है। प्रकृत पद्य में रावण ने अपने लिए मनो मरने वालों के गुणगान किया है और इसमें उन्हें धिक्कार दिया है। इसमें इससे उसने प्रारब्ध निंदा के द्वारा अपनी बेबसी दिखाई है और उसमें अपने पराक्रम की याद दिलाकर अपना गर्व दिखाया है। इसमें अपनी भुजाओं का कुंठित होना स्वीकार किया है और उसमें उन्हें अपनी उदासीनता पर फटकारा है। जैसे कोई राजा अपने ऊपर शत्रु की चढ़ाई को देखकर अपने यहाँ निश्चित बैठे वीरों को फटकार दे कि एक क्षुद्र ग्राम का जीत कर फूले हुए यह सेनापति भी व्यर्थ है, जबकि मेरा शत्रु मेरे आदमियों को मार डालता है। इसमें सेनापतियों को उत्साहित और क्रोधित करने के लिए उसकी व्यर्थ कही गई है। इसी प्रकार न्यकार इत्यादि पद में एभिर भुजई है पदों से भुजाओं की सामने खड़ी पुरुष की तरह परत्वेन निर्देश किया गया है। प्रकृत पद्य में यह बात नहीं है कि इसमें भे भुजा कह कर के पहले आत्मीयत्व सूचित किया जाए और फिर बेकुंठिता शब्द से उनका अनुनिकम्मा हो जाना, शत्रु के प्रतिकार में असमर्थ हो जाना भूतार्थक कत प्रत्यय में से सूचित किया है एवं बेउपसर्ग पूर्वक उनका अत्यंत वैयर्थ सूचन किया है। इन सब बातों से रावण की असमर्थता और दीनता प्रकट होती है। न्यकारह इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लूट में पिन भुजाओं का गर्वातिरेक तो सूचित किया है, परंतु यह नहीं कहा है कि राम के पराक्रम के आगे वे व्यर्थ हो गई है। इसी से वहाँ न तो असमर्थता है, न हीनता, न दीनता और न निर्वेद। सारांश यह कि न्यकारह इत्यादि पद के भाव को यदि दिग सदर पोल हानन इत्यादि का रूप दे दिया जाए तो यह ईर्ष्या जन्य निर्वेद का उदाहरण हो सकता है। ईर्ष्या को यदि कई मानसिक भावों का संगम स्थल कहे तो अतियोक्ति न होगा। ईर्ष्या के बाद निर्वेद, क्रोध और मान आदि अनेक भावों की ओर मार्ग बदल जाता है। यदि ईर्ष्या के बाद अपनी असमर्थता, क्षीणता, दीनता, प्रारब्ध निंदा आदि चल पड़ी तब तो निर्वेद समझिए, और यदि असूया, गर्व, अमर्ष आदि की ओर प्रकृति प्रवृत्ति हो गई तो क्रोध का मार्ग समझिए, और यदि इन दोनों के अतिरिक्त कुछ और ही हुआ तो फिर कोई तीसरा मार्ग समझिए। यदि हमारे इस दिग्विजय के अनुसार आप विचार करेंगे कि साफ साफ समझ में आ जाएगा कहाँ निर्वेद है और कहाँ क्रोध, फिर न किसी से पूछने की आवश्यकता रह जाएगी, न कहीं बहकना पड़ेगा। नकार इत्यादि पद हनुमान नाटक का नहीं है, अपितु वहाँ कहीं अन्यत्र से लेकर उद्धृत किया गया है। यह बात हम पहले कह चुके हैं।